एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्ते और आपका स्वागत है।
आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की चीरफाड़ करने वाले हैं जो हर जगह है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता।
बिल्कुल, ट्रैफिक में फंसने से लेकर ऑफिस में अपनी टीम के साथ काम करने तक,
यहाँ तक कि देश आपस में कैसे बर्ताव करते हैं, इन सबके पीछे एक छिपा हुआ तर्क काम करता है।
और इस छिपे हुए तर्क को समझने के विज्ञान का नाम है गेम थियोरी, यानी खेल सिद्धांत।
और इसे समझने के लिए हमारे पास एक बेहतरीन गाइड है, केन बिनमॉल की किताब गेम थियोरी, अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन।
हाँ, और ये बस एक परिचय नहीं है, ये दुनिया को देखने का एक नया चश्मा है, आप कह सकते हैं।
चलिए फिर ये चश्मा पहनते हैं। सबसे पहले, इस किताब के जो लेखक हैं केन बिनमॉल, वो कोई आम प्रोफेसर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, जो सिर्फ क्लासरूम में थ्योरी पढ़ाते हैं वैसे नहीं है।
अर्थशास्त्री तो हैं, पर उनकी असली पहचान है थ्योरी को असल दुनिया की अरबों खरबों की बाजी में इस्तेमाल करना।
हाँ, और इसका सबसे मजेदार किस्सा है साल 2000 का।
बताइए।
तब ब्रिटेन की सरकार 3G मोबाइल स्पेक्ट्रम की नीलामी कर रही थी और उन्होंने बिनमॉल और उनकी टीम को नीलामी डिजाइन करने के लिए बुलाया।
अच्छा।
सरकार को उम्मीद थी कि इससे कोई 2-3 बिलियन पाउंड मिल जाएंगे, लेकिन बिनमॉल ने गेम थ्योरी का इस्तेमाल करके नीलामी के नियम कुछ ऐसे बनाए
कि सरकार ने 22.5 बिलियन पाउंड कमाए।
हाँ, यानी उम्मीद से लगभग 10 गुना ज्यादा।
ये कोई जादू नहीं था, ये सिर्फ खेल के नियमों की गहरी समझ थी।
और यही बात बिनमॉल को खास बनाती है। वो सिर्फ ये नहीं समझाते कि खेल क्या है, वो ये भी जानते हैं कि खेल के नियम बदलकर नतीजा कैसे बदला जाता है।
और उनका दायरा सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है ना?
बिल्कुल नहीं, वो जीव विज्ञान, दर्शन सब में झांकते हैं। वो एक बहुत बड़ा सवाल पूछते हैं।
क्या?
निष्पक्षता की भावना आई कहां से? क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं? वो कहते हैं नहीं, इसका जवाब भी गेम थियोरी के तर्कों में ही छिपा है।
तो फिर ये किताब है किस बारे में? क्या ये हमें पोकर जीतना या ऑफिस पॉलिटिक्स में माहिर होना सिखाएगी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिनमॉल शुरू में ही ये साफ कर देते हैं कि भाई देखो, ये कोई चालाक बनने की गाइड नहीं है।
अच्छा।
इसका मुख्य उद्देश्य गेम थियोरी से जुड़े जो मिथक है उनको दूर करना है।
तो ये है क्या फिर?
ये रणनीतिक बातचीत को समझने का एक विज्ञान है। और बिनमॉल का सबसे बड़ा तर्क ये है कि गेम थियोरी का सबसे जरूरी विचार नैश इक्विलिब्रियम है।
नैश इक्विलिब्रियम, ये नाम सुना हुआ लगता है, शायद वो फिल्म थी अ ब्यूटीफुल माइंड, जॉन नैश के बारे में।
हाँ, उन्हीं के नाम पर है। आसान भाषा में कहें तो ये किसी भी खेल में एक स्थिर अवस्था है।
स्थिर अवस्था मतलब?
ना फैसला बदल कर कोई फायदा नहीं उठा सकता, बशर्ते बाकी लोग अपनी रणनीति पर टिके रहें।
ठीक है, तो किताब इसी एक विचार के इर्द गिर्द घूमती है।
हाँ, और दिखाती है कि ये साधारण सा आइडिया कितना शक्तिशाली है।
ठीक है, तो चलिए इसे खोलना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो गेम थ्योरी में खेल का क्या मतलब है, क्रिकेट या शतरंज?
नहीं, यहाँ खेल का मतलब है कोई ऐसी स्थिति जहाँ आपका नतीजा सिर्फ आपके फैसले पर नहीं
बल्कि दूसरों के फैसलों पर भी निर्भर करे।
बिल्कुल, जैसे सुबह दफ्तर जाने के लिए रास्ता चुनना, अगर सभी की शॉर्टकट ले लेंगे तो वो सबसे लंबा रास्ता बन जाएगा।
अरे हाँ, ये तो एक खेल है।
हाँ, खिलाड़ी हैं सारे ड्राइवर्स, रणनीतियां हैं अलग अलग रास्ते, और नतीजा जिसे पे ऑफ कहते हैं वो है दफ्तर पहुंचने में लगा समय।
समझ गया, ये तो बहुत सरल है, ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन गेम हुआ।
सही,
लेकिन उन स्थितियों का क्या जहाँ मेरा फायदा सीधे सीधे दूसरे का नुकसान हो? वो तो ज्यादा मुश्किल और आम लगता है।
आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, और यही हम गेम थ्योरी की सबसे मशहूर और दिमाग घुमा देने वाली पहेली पर आते हैं।
कौन सी?
प्रिजनर्स डिलेमा, यानी कैदियों की दुविधा।
अच्छा।
ये व्यक्तिगत और सामूहिक तर्क के बीच के संघर्ष को दिखाती है।
ओके, इसे विस्तार से समझते हैं।
कल्पना कीजिए, पुलिस ने दो संदिग्धों को पकड़ा है और दोनों को अलग अलग कमरों में रखा है।
ठीक है।
पुलिस के पास सबूत कम है, वो दोनों से एक डील करती है। नियम ये है। पहला, अगर तुम दोनों चुप रहते हो तो दोनों को सिर्फ 1-1 साल की सजा होगी।
ये तो अच्छा है।
दूसरा, अगर तुम गवाही दे देते हो और तुम्हारा साथी चुप रहता है तो तुम आजाद हो जाओगे और उसे 10 साल की सजा होगी।
ओहो।
और तीसरा, अगर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ गवाही दे देते हो तो दोनों को 5-5 साल की सजा होगी।
अच्छा,
अब आप बताइए एक कैदी को क्या करना चाहिए?
रुकिए, ये तो जाहिर है, दोनों के लिए सबसे अच्छा यही है कि वो चुप रहें और 1-1 साल की सजा काट लें,
है ना?
हाँ,
इसमें दुविधा कहाँ है, बस एक दूसरे पे भरोसा करना है।
यही तो सारा खेल है, ये भरोसे का नहीं बल्कि ठंडे तर्क का सवाल है।
कैसे?
सोचिए, आप एक कैदी है, आप सोचेंगे ठीक है मेरा साथी क्या कर सकता है, या तो वो चुप रहेगा या गवाही देगा।
ठीक।
तो केस वन, मान लीजिए मेरा साथी चुप रहता है तब मेरे लिए क्या अच्छा है? अगर मैं भी चुप रहूं तो 1 साल की सजा, पर अगर मैं गवाही दे दूं तो मैं आजाद हो जाऊंगा, तो यहाँ तो गवाही देना बेहतर है।
सही है।
अब केस टू, मान लीजिए मेरे साथी ने गवाही दे दी, अब मेरे लिए क्या अच्छा है? अगर मैं चुप रहूं तो मुझे 10 साल की सजा होगी।
बापरे।
पर अगर मैं भी गवाही दे दूं तो सिर्फ 5 साल की, तो यहाँ भी गवाही देना ही बेहतर है।
अरे हाँ, मतलब चाहे दूसरा कुछ भी करे, मेरे अपने फायदे के लिए गवाही देना ही सबसे तार्किक फैसला है।
बिल्कुल, और दूसरा कैदी भी ठीक यही सोचेगा।
तो नतीजा?
नतीजा ये कि दोनों गवाही देंगे और दोनों को 5-5 साल की सजा मिलेगी।
बिल्कुल।
जबकि अगर दोनों ने तर्कहीन होकर एक दूसरे का साथ दिया होता तो सिर्फ 1-1 साल की सजा होती।
यही है कैदियों की दुविधा।
हाँ, व्यक्तिगत रूप से जो तार्किक है वो सामूहिक रूप से विनाशकारी हो सकता है।
और इसका असल दुनिया में कोई बड़ा उदाहरण है?
सबसे बड़ा उदाहरण है शीत युद्ध, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हथियारों की होड़।
अच्छा, वो कैसे?
दोनों के लिए सबसे अच्छा क्या था कि कोई हथियार ना बनाए।
हाँ।
लेकिन दोनों ने प्रिजनर्स डिलेमा वाला तर्क लगाया,
अगर वो नहीं बना रहे हैं तो हमें बना लेने चाहिए ताकि हम शक्तिशाली हो जाएं,
और अगर वो बना रहे हैं तब तो हमें जरूर बनाने चाहिए वरना हम असुरक्षित हो जाएंगे।
और नतीजा ये हुआ कि दोनों ने इतने परमाणु हथियार बना लिए कि पूरी दुनिया को कई बार खत्म किया जा सकता था।
बिल्कुल, ये एक भयानक लेकिन एक स्थिर संतुलन था।
तो इस स्थिर संतुलन को ही नैश इक्विलिब्रियम कहते हैं।
एकदम सही।
मतलब एक ऐसी स्थिति जहां दोनों देश हथियारों से लैस हैं और कोई भी अकेले अपने हथियार कम नहीं करना चाहता।
बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि नैश इक्विलिब्रियम हमेशा सबसे अच्छा नतीजा होता है।
नहीं
नहीं, ये सिर्फ सबसे स्थिर नतीजा होता है। प्रिजनर्स डिलेमा का 5-5 साल वाला नतीजा एक नैश इक्विलिब्रियम है, पर वो दोनों के लिए बुरा है।
और सड़क पर बाईं ओर गाड़ी चलाना भी एक नैश इक्विलिब्रियम है, और ये एक अच्छा नतीजा है।
ठीक समझे।
लेकिन जिंदगी में हम हमेशा लोगों से सिर्फ एक बार तो नहीं मिलते। अगर उन्हीं कैदियों को पता हो कि उन्हें भविष्य में भी एक दूसरे से काम पड़ सकता है तो क्या उनका व्यवहार बदलेगा?
बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बदलेगा।
अच्छा।
साख और भरोसे की कीमत बढ़ जाती है।
सही है।
और यहाँ जैसे को तैसा या टिट फॉर टैट जैसी रणनीतियाँ बहुत सफल होती हैं।
जैसे को तैसा, इसका क्या मतलब है?
इसका नियम बहुत सरल है, पहली चाल में सहयोग करो।
ठीक है।
उसके बाद हमेशा वही करो जो तुम्हारे विरोधी ने पिछली चाल में किया। अगर उसने सहयोग किया तो तुम भी करो,
और अगर उसने धोखा दिया
तो तुम भी अगली चाल में उसे सजा दो। यह रणनीति अच्छी है, माफ करने वाली भी है, बदला लेने वाली भी है, और सीधी सादी है।
हमारे समाज का ज्यादातर ताना बाना शायद इसी जैसे को तैसा के तर्क पे टिका है।
बिल्कुल, हम दुकानदारों से पड़ोसियों से अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें उनसे दोबारा मिलना है।
ये सब तो ठीक है, पर यह बहुत दिमागी और गणितीय लगता है, और अब तक की चर्चा का जो सबसे हैरान करने वाला हिस्सा है वो बिनमोर का ये दावा है कि गेम थियरी के लिए तर्क करने वाले खिलाड़ियों की जरूरत ही नहीं है।
हाँ।
मतलब जानवर या पेड़ पौधे भी ये खेल खेलते हैं, ये कैसे हो सकता है?
हाँ, और यही विकासवादी गेम थियरी है, एवोल्यूशनरी गेम थियरी।
अच्छा।
यहाँ खिलाड़ी इंसान नहीं बल्कि जीन है, रणनीतियाँ जानवरों के गुण है, जैसे आक्रामक होना या शांत रहना, और पे ऑफ
अगली पीढ़ी तक अपने जीन पहुँचाना।
बिल्कुल, जो रणनीति ज्यादा सफल होती है वो आबादी में फैल जाती है।
कोई उदाहरण है इसका?
हॉक डव यानी बाज फाख्ता गेम इसका क्लासिक उदाहरण है।
समझाइए।
मान लीजिए एक आबादी में दो तरह के जानवर हैं, बाज जो हर पर्यावरण के लिए लड़ता है और फाख्ता जो लड़ाई से बचता है।
ठीक है।
अगर सारे बाज होंगे तो वो आपस में लड़ लड़कर खत्म हो जाएंगे, अगर सारी फाख्ताएं होंगी तो एक भी बाज आकर सबको भगा देगा। विकास इन दोनों के बीच एक संतुलन खोजता है, एक स्थिर नैश इक्विलिब्रियम जहां आबादी में कुछ प्रतिशत बाज और कुछ प्रतिशत फाकताएं होती हैं।
और इसके लिए किसी जानवर को सोचने की जरूरत नहीं है, ये प्रकृति का गणित है।
बिल्कुल,
ये तो कमाल है। इसका मतलब है कि सहयोग और संघर्ष की रणनीतियां हमारे डीएनए में लाखों सालों से विकसित हो रही हैं।
हाँ।
और ये हमें बिनमोर के सबसे गहरे विचार तक ले जाता है, निष्पक्षता यानी फेयरनेस। हम क्यों मानते हैं कि चीजें बराबर होनी चाहिए? क्या ये सिर्फ किसी ने हमें सिखाया है?
बिनमोर का तर्क है कि नहीं, ये सिर्फ सिखाई हुई बात नहीं है, ये हजारों सालों से सामाजिक समस्याओं को सुलझाने का एक विकसित संतुलन है।
निष्पक्षता एक सामाजिक तकनीक है, एक सोशल टेक्नोलॉजी।
हाँ, सबसे अच्छा उदाहरण है केक काटने का नियम, जो हम सब ने बचपन में इस्तेमाल किया होगा।
एक जना काटेगा और दूसरा चुनेगा।
हाँ, आई कट यू चूज। ये नियम अपने आप में निष्पक्षता लागू कर देता है। काटने वाले को पता है कि अगर उसने एक टुकड़ा बड़ा और एक छोटा काटा
तो दूसरा वाला बड़ा टुकड़ा उठा लेगा,
इसलिए काटने वाले की मजबूरी है कि वो दोनों टुकड़े एकदम बराबर काटे। ये एक ऐसा नाश इक्विलिब्रियम है जो निष्पक्ष भी है।
तो हमारे समाज के कई नैतिक नियम इसी तरह के विकसित संतुलन है।
हाँ, जो हमें एक साथ रहने और फलने फूलने में मदद करते हैं।
तो अगर इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ मुख्य बातें क्या होंगी? मेरे लिए पहली और सबसे बड़ी बात यह है कि खेल के नियम ही सब कुछ हैं। आप खिलाड़ी को मत बदलिए, खेल को बदलिए, जैसा बिनमोर ने 3G नीलामी के किया।
सही बात है, उन्होंने कंपनियों को ज्यादा ईमानदार होने के लिए नहीं कहा,
उन्होंने नीलामी के नियम ही ऐसे बना दिए कि आक्रामक बोली लगाना ही उनके हक में था।
मेरे लिए सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निष्पक्षता का एक रणनीतिक आधार है। ये सिर्फ एक नैतिक विचार नहीं है, बल्कि एक सफल विकासवादी रणनीति है।
अच्छा,
समाज इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि हमने ऐसे संतुलन खोज लिए हैं जिन्हें ज्यादातर लोग निष्पक्ष मानते हैं। ये समाज को देखने का एक बिल्कुल नया तरीका है।
और तीसरा कि नैश इक्विलिब्रियम का मतलब हमेशा सबसे अच्छा नहीं बल्कि सबसे स्थिर होता है।
बिल्कुल, ट्रैफिक जैम एक स्थिर संतुलन है, लेकिन वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है।
ये समझना जरूरी है कि हम अक्सर ऐसी बुरी लेकिन स्थिर स्थितियों में फंस जाते हैं जिनसे बाहर निकलने के लिए खेल के नियमों को बदलना पड़ता है,
न कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है।
सही।
किताब में एक पंक्ति है जो इस बात को बहुत अच्छे से बताती है।
क्या?
गेम थ्योरी जीतने का कोई मैनुअल नहीं है, ये उन स्थितियों के तर्क को समझने का एक विज्ञान है जहां खिलाड़ियों की किस्मत एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसका लक्ष्य सलाह देना नहीं बल्कि स्थिर परिणामों की भविष्यवाणी करना है।
मतलब ये कोई जादू की छड़ी नहीं है बल्कि एक एक्सरे मशीन है।
हाँ, जो आपको किसी भी स्थिति का ढांचा दिखा सकती है।
तो फिर इन सब विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? चलिए कुछ ठोस उदाहरणों की बात करते हैं।
बिल्कुल, जैसे ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। अगर बॉस सिर्फ व्यक्तिगत प्रदर्शन को इनाम देता है तो टीम के सदस्य एक दूसरे की मदद करने के बजाय एक दूसरे से होड़ करेंगे।
हाँ, ये एक प्रिजनर्स डिलेमा जैसी स्थिति बन सकती है।
बिल्कुल, लेकिन अगर बॉस खेल के नियम बदलकर टीम की सफलता को इनाम दे तो अचानक सबके लिए सहयोग करना ही सबसे तार्किक रणनीति बन जाएगी।
मतलब एक अच्छा मैनेजर असल में एक अच्छा गेम डिजाइनर होता है।
कह सकते हैं, वो ऐसा माहौल बनाता है जहां लोगों के व्यक्तिगत हित टीम के हित से जुड़े हों।
और निजी रिश्तों में मुझे लगता है मैं अपनी पत्नी के साथ हर वीकेंड पर बैटल ऑफ द सेक्सेस गेम खेलता हूँ।
ये क्या होता है?
मैं क्रिकेट मैच देखना चाहता हूँ, वो शॉपिंग पर जाना चाहती हैं, हम दोनों एक साथ समय बताना चाहते हैं लेकिन अपनी अपनी पसंद की जगह पर।
अच्छा।
अक्सर हम बीच का रास्ता निकालकर नेटफ्लिक्स देखने लगते हैं, जो शायद एक तरह का सब ऑप्टिमल इक्विलिब्रियम है।
ये बिल्कुल सही उदाहरण है। ये गेम हमें सिखाता है कि कई बार एक साझा संतुलन तक पहुंचने के लिए संवाद और समझौता कितना जरूरी है।
वरना नतीजा ये हो सकता है कि आप स्टेडियम में अकेले हों और वो मॉल में अकेली, जो दोनों के लिए सबसे बुरा नतीजा है।
बिल्कुल, गेम थ्योरी हमें याद दिलाती है कि दूसरे खिलाड़ी की पसंद और नतीजों को समझना कितना जरूरी है।
तो इस पूरी चर्चा से मेरे लिए सबसे यादगार बात यह है कि दुनिया को गेम थ्योरी के चश्मे से देखने के बाद आप चीजों को अलग तरह से समझने लगते हैं। आप ट्रैफिक जाम को देखकर सिर्फ गुस्सा नहीं होते, आप सोचते हैं कि ये एक खराब संतुलन है जिसे बेहतर नियमों से ठीक किया जा सकता है।
जैसे कंजेशन चार्ज लगाकर?
हाँ, आप दो देशों के तनाव को सिर्फ अच्छे और बुरे में नहीं देखते बल्कि उनके रणनीतिक हितों के टकराव के रूप में देखते हैं।
जैसे सहयोग और निष्पक्षता, उसका एक बहुत ही मजबूत तार्किक और वैज्ञानिक आधार है।
ये सिर्फ आदर्शवादी बातें नहीं है।
नहीं, हम इसलिए सहयोग करते हैं क्योंकि लाखों सालों से ये हमारे अस्तित्व के लिए एक सफल रणनीति रही है।
ये मानवीय स्वभाव में गहरा आशावाद जगाता है।
तो अगली बार जब कोई खुद को किसी मुश्किल बातचीत में, किसी बहस में या किसी भी रणनीतिक स्थिति में फंसा हुआ पाए,
तो शायद ये सोचने लायक है
कि हम असल में कौन सा खेल खेल रहे हैं, इसके खिलाड़ी कौन हैं, नियम क्या हैं और नतीजे क्या हैं, और सबसे जरूरी सवाल,
क्या हम एक बेहतर नतीजे पर पहुंचने के लिए इन नियमों को बदल सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।